धवला पुस्तक दूसरी लेक्चर नंबर 5। ओम नमः सिद्धेश्य। ओम नमः सिद्धेश्य। ओम नमः सिद्धेश्य। ओम शुद्धात्मने नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोए सौवसाहूणं सिद्धमणंतमणिंदिय मनुव मम पथसोखमणवच्छं केवलपहोहनिज्य दुन्नयतिमिरंजिनं नमः। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबलिया आचार्य। इसके पहले जो जीवस्थान नामक प्रथम खंड है उसमें ये सत प्ररूपणा चल रही है, और दूसरे पुस्तक के पृष्ठ संख्या 437 पर आम्हा है, 437। हाँ, आपका कोई प्रश्न है जयाबे? अरे ये चालू नहीं है। हेलो,
आप
प्रश्न? हाँ, ये कहीं बटन रॉन्ग दब गया था। क्या प्रश्न था आपका? हाँ, अने चौथे गुणस्थान का अपर्याप्त आलाप, बराबर। हाँ, उसमें क्या शंका है? हाँ, प्रश्न क्या है? प्रमत्त कह रहे हैं कि आपके चौथे गुणस्थान की बात कर रहे हैं? छठे की बात कर रहे हैं।
दोनों में भी आया है ना?
हाँ, प्रश्न उसके संबंध में क्या है? चौथे गुणस्थान वाला अपर्याप्त अवस्था में कब हो सकता है? जब यहाँ सम्यक तो सहित मरकर अन्य भाव में जाता है तो उसके विग्रह गति में भी चौथा गुणस्थान है, और वहां पर भी उसका चौथा गुणस्थान चल रहा है जब तक वो निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में है। अपर्याप्त कहने से वो लब्धि अपर्याप्त नहीं समझना। हाँ, जब ही हम छठे गुणस्थान में जब लगाते हैं अपर्याप्त अवस्था, तो जो मुनिराज है छठे गुणस्थान वर्ती, वो जब आहारक शरीर बनाते हैं तो आहारक शरीर संबंधी उनकी 6 पर्याप्तियां पहले डेवलप होती है। तो जब तक उनकी दूसरी पर्याप्ति पूरी नहीं होती, शरीर पर्याप्ति, तब तक उनको निवृत्ति अपर्याप्त आहारक शरीर की अपेक्षा कहेंगे। ये दोनों के ही अपर्याप्त अवस्था। ऐसे 13वें गुणस्थान में भी औदारिक मिश्र वगैरह वो जो कहते हैं तब भी वो अपर्याप्त अवस्था कहने में आती, वो तब जब गुणस्थान आएगा तब उसकी चर्चा करेंगे। निवृत्ति अपर्याप्त,
निवृत्ति
का अर्थ होता है वो तो अभी चल रही है, पर्याप्तियों की रचना चल रही है, दूसरे तक आया है, अभी दूसरी पूरी नहीं हुई है, ऐसा जीव लेना। तो उसमें पहला भी गुणस्थान होता, हाँ, विग्रह गति में पहला है, दूसरा है, चौथा है, और छठे में जो अपर्याप्त कहते हैं वो आहारक शरीर की अपेक्षा अपर्याप्त कहते हैं।
विग्रह मध्य में छठा गुणस्थान नहीं होता है।
हाँ, यानी वो तो चौथे से ऊपर के गुणस्थान विग्रह गति में नहीं होते। हाँ, यानी ऊपर के किसी भी गुणस्थान में मरकर चला जाता है तो चौथे में चला जाता है, और तीसरे गुणस्थान में मरण नहीं, इसलिए उसमें अपर्याप्त अवस्था नहीं ली थी।
हाँ,
अभी खुल गया। अच्छा, अभी हम 437 पृष्ठ पर आए हैं। अब यहाँ अपूर्वकरण गुणस्थान की बात हम पढ़ेंगे, हाँ देखिए नीचे का पैराग्राफ, अपूर्व करण गुणस्थान वर्ती जीवों के ओघ आलाप कहने पर, यानी उस संबंधी अभी ये सारे 20 प्ररूपणाएं उसमें लगाएंगे। तो गुणस्थान तो हमें मालूम है, आठवां गुणस्थान है। अब ये संगी जीवों में ही होगा, संगी पर्याप्त जीवों में, तो जीव समास होगा संगी पर्याप्त। पंचेंद्रिय सॉरी छह पर्याप्तियां है उनके, दसों प्राण है। और अभी देखो गुणस्थान आठवां है, सातवें से हमने आहार संज्ञा को नहीं लिया था। हाँ तो आठवें गुणस्थान में अभी भय का उदय है आठवें के अंत तक, क्योंकि छह नौकोशाय का उदय आठवें के अंत तक होता है। तो यहाँ भय संज्ञा भी है, मैथुन भी है और परिग्रह संज्ञा भी है, तीन संज्ञा होगी। गति में तो अकेले मनुष्य गति लेना, पंचेंद्रिय जाति लेना, त्रस काय लेना। अब यहाँ योग कौन कौन से होते हैं? मनोयोग, वचन योग, चार चार, औदारिक का योग, ये नौ ही हो गए, ज्यादा कोई नहीं हो गए, योग हो गए ना योग। फिर वेद, तीनों ही वेद वाले हो सकते हैं, और अभी अपगत वेद यहाँ नहीं है इस गुणस्थान में, इसलिए तीन वेद कहेंगे हम उसको। कषाय तो चारों ही है। ज्ञान कौन कौन से हो गए? चार ज्ञान। हाँ यानी वो किसी जीव के होते हैं, इसलिए वो चारों को हम इंक्लूड करेंगे। संयम आठवें गुणस्थान में, नहीं नहीं सम्यक तो नहीं, सामायिक और छेदोपस्थापन संयम। हाँ अब दर्शन, हाँ चक्षु और अवधि दर्शन। फिर लेशा में द्रव्य से छह बताए थे, हाँ भाव से शुक्ल लेशा, अभी आठवें गुणस्थान के ऊपर शुक्ल लेशा ही कहेंगे, भव्य ही है। अभी सम्यक्त्व कौन से हो गए? हाँ क्योंकि द्वितीय ऑप्शन के साथ भी चढ़ेगा, क्षायिक के साथ भी चढ़ेगा, इसलिए दो हो गए। हाँ संगी है, आहारक है, उपयोग भी दोनों है, क्योंकि उपयोगों का पलटना होता है श्रेणी में। अभी यहाँ की बात हम पढ़ेंगे, 438 पेज पर आ गए हम योग के बाद। आगे यहाँ शंका समाधान है उनका। शंका में पूछते, ध्यान में लीन अपूर्व करण गुणस्थानवर्ती जीवों के वचन बल का सद्भाव भले ही रहा आवे, क्योंकि वो स्वयं ही वो एक्सप्लेन कर रहा है, भाषा पर्याप्ति नामक पौद्गलिक स्कंधों से उत्पन्न हुई शक्ति, ये यहाँ पौद्गलिक पौद्गलिक कह रहे हैं पर्याप्तियों को,
शक्ति बताए ना।
हाँ औद्गलिक स्कंदों से उत्पन्न हुई शक्ति उनके पाई जाती है, किंतु उनके वचन योग या काय योग का सद्भाव नहीं मानना चाहिए। यानी वहाँ शक्ति तो है परंतु उसका कार्य नहीं हो रहा है, ऐसा वो उनका कहना है, पूछना है। समाधान, नहीं, क्योंकि ध्यान अवस्था में भी अंतर जल्प के लिए प्रयत्न रूप वचन योग और कायगत सूक्ष्म प्रयत्न रूप काय योग का सत्व सत्व ने अस्तित्व अपूर्वकरण गुणस्थानवर्ती जीवों के पाया ही जाता है, इसलिए वहां वचन योग और काय योग भी संभव है। आगे बढ़ते भी ये हमने डिराइव किया था, यहां से पढ़ेंगे। तीन वेद, चारों कषाय, केवल ज्ञान के बिना शेष चार ज्ञान, यानी मति, श्रुत, अवधि और मन पर्य, सामायिक और छेदोपस्थापना, ये दो संयम तो छठे से नवे तक होते हैं। केवल दर्शन के बिना तीन दर्शन, चक्षु चक्षु अवधि दर्शन, द्रव्य से छह लेशाएं, भाव से केवल शुक्ल लेशा, क्योंकि अभी तो केवल मनुष्य है फिर भी छह लेशाएं, भव्य सिद्धिक, औषमिक और क्षायिक, ये दो सम्यक्त्व, संगिक, आहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। ये तो सरल है, अभी अभी हमको तो ये 20 प्ररूपणा लगाना है। अब अनिवृत्तिकरण में हम भाग करेंगे, क्योंकि वेद का उदय उसके पहले भाग तक है, वहां तक अभी भय संज्ञा भी चली गई है, परंतु मैथुन और परिग्रह पहले भाग में कहेंगे है करके, दूसरे भाग से वो मैथुन संज्ञा भी नहीं है कह देंगे। हाँ और फिर जो कषाय का एक एक का उदय मिटेगा, जैसे आगे आगे एक एक यानी चार कषाय के बदले तीन कषाय, दो कषाय ऐसा कहेंगे। इसलिए यहाँ प्रथम भाग द्वितीय भाग ऐसे भेद करके बताएंगे। देखो अनिवृत्तिकरण गुणस्थान की विशेषता है, क्षय करता है कर्मों का, सत्व की अपेक्षा उसके अलग भेद होते हैं, आपको याद होगा शायद। तो हाँ नहीं नहीं, यहाँ अनिवृत्तिकरण गुणस्थानों में ये प्रकृतियों के क्षय करने की अपेक्षा उसके भय अलग होते हैं, ये उदय की अपेक्षा भेद अलग होते हैं। हाँ पांच होते हैं, और उसी अपेक्षा से वहाँ बंधन भी किसका होता है किसका नहीं होता उसकी बात करेंगे, क्योंकि वेद का उदय तो वेद का बंध होगा, जिस कषाय का उदय यानी उदय रूप स्थान है वहाँ तक उसका वो बंध भी होगा। इस तरह से उसके पांच भेद अलग, और उसमें मेरे ख्याल से नौ भेद पड़ते हैं ना, कुछ सोलह के होते हैं, फिर आठ, हाँ सोलह प्रकृतियों का क्षय, आठ कषाय बीच वाले उनका क्षय होता है, हाँ नपुसक वेद स्त्री वेद छः नौ कषाय, फिर पुरुष वेद, हाँ पुरुष वेद अलग, हाँ छः नौ कषाय के साथ वो, हाँ देखो अभी हम यहाँ कहेंगे, ये नीचे का पैराग्राफ है 438 पेज पर। अनिवृत्तिकरण गुणस्थान के प्रथम भागवर्ती जीवों के ओह आलाप कहने पर, अब गुणस्थान में नौवा गुणस्थान है, संगी पर्याप्त जीव समास है, छहों पर्याप्तियां हैं, दशों प्राण हैं, मैथुन और परिग्रह ये दो संज्ञाएं होती है, क्योंकि वो तो छह नौकषाय का उदय आठवें के अंत तक है, वहां उसकी उदय विच्छित्ति हो गई। दो संज्ञा आगे लिखा है, दो संज्ञा होने का कारण यह है, अपूर्वकरण गुणस्थान के अंतिम समय में भय की उदीर्णा तथा उदय नष्ट हो गए हैं, इसलिए यहाँ पर भय संज्ञा नहीं है। और ये जो भय की बात भी कहते वो कर्मों के उदय उदीर्णा की अपेक्षा बताई जाती है। उसके आगे मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रसकाय, देखो इसके साथ साथ आप वो 17 नंबर का टेबल भी देख सकते हैं नीचे नीचे, जो हम पढ़ रहे हैं उसके साथ उसको हम 439 पेज पर नीचे उसका टेबल बनाया है। तो काय में त्रसकाय लिया, अब योगों में मन के चार है, वचन के चार है, और एक औदारिक काय है। और देखो यहाँ पर भी योगों का पलटना होता है, इसको संक्रांति कहते हैं, वचन योग से काय योग से मनोयोग ऐसे तीनों ही पलटते रहते हैं, और उसका काल भी बहुत छोटा है, यानी नवे गुणस्थान के अंतर्मूर्त काल में बहुत बार ये योगों का भी पलटना होता है। हम कहते हैं वो ध्यान का नाम क्या है, पृथक्त्व वितर्क विचार, विचार यानी पलटना, योगों की भी संक्रांति यानी पलटना होता है, और वो जो जो श्रुत वितर्क, वितर्क है ना श्रुत ज्ञान का जो विचार है उस संबंधी, तो वो भी पलटता है। तो योग नौ, तीनों वेद यानी तीनों ही वेद वाले, परंतु यहाँ द्रव्य से पुरुष है वो तो श्रेणी चढ़कर मोक्ष भी जा सकते हैं। कषाय अभी चारों है पहले भाग में, वेद भी है कषाय भी है, केवल ज्ञान के बिना चार ज्ञान जो हमने आठवें में देखे थे वैसे ही यहाँ लेना है। संयम भी सामायिक और छेदोपस्थापना दो संयम, केवल दर्शन के बिना तीन दर्शन, द्रव्य से छह लेशाएं और भाव से शुक्ल लेशा। ये तो टेबल में हमने वो भाव के आगे शु लिखा था, भाव से शुक्ल लेशा, जैसे उन्होंने अपूर्वकरण के टेबल में लिखा था भाव से शुक्ल, वैसे यहाँ नहीं लिखा था तो हमने ऐड कर दिया पुस्तक में। आपकी पुस्तक में शायद लिखा हुआ होगा, पहले से लिखा है टेबल में, ले के लेशा के नीचे का जो कॉलम है भाव से शुक्ल लिखा है क्या, वहाँ पर ऐड किया है ना। भव्य सिद्धिक है, सम्यक्त्व में औपशमिक और सॉरी क्षायिक दोनों होते हैं, संगीत है, आहारक है, और दोनों उपयोग वाले, साकार उपयोग और अनाकार उपयोग, यानी वो श्रेणी में भी ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग चेंज होता रहता है। हमने पहले भी देखा था जब प्रथमोपशम सम्यक तो प्राप्त होता था ना, वो ज्ञानोपयोग में प्राप्त होता है, और प्रथमोपशम सम्यक तो के काल में फिर वो ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग चेंज होता रहता है उस काल के अंदर, तो शुरुआत होती है ज्ञानोपयोग में। यहाँ तो श्रेणी की बात है, यहाँ तो वो तो ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग दोनों हो गए। द्वितीय ऑप्शन सम्यक्त्व और चारित्र भी औपशमिक, हाँ वो तो सातवें में होता है। द्वितीय ऑप्शन करने के बाद भी हजारों बार छठा सातवां होता है, ऐसा नहीं कि द्वितीय ऑप्शन किया और डायरेक्ट ऊपर चढ़ा, ऐसा ऐसा भी नहीं होता। हाँ अधकरण सातवें में अधकरण होता है, यानी तीन करण जो चारित्र मोनी के लिए मांडे है उसका पहला करण सातवें गुणस्थान में होता है, फिर अपूर्व करण को गुणस्थान का नाम और करण का नाम वही है।
यानी औपशमिक प्रथम औपशम सम्यक तो ज्ञान उपयोग में होगा,
हाँ शुरुआत उसकी,
हाँ शुरुआत की, और द्वितीय औपशम में कहीं पर भी होगा।
द्वितीय औपशम में तो वो तो जब करण मांडे थे द्वितीय औपशम के लिए तब ज्ञान उपयोग में भले हो, परंतु बाद में तो वो तो ज्ञान उपयोग दर्शन उपयोग चलता रहता है।
यहाँ जैसी कंडीशन है कि उपयोग साकार उपयोग,
क्योंकि उसने अभी आत्मानुभव करना है ना, अभी तक नहीं किया था, अभी कर रहा है, इसलिए वहाँ साकार उपयोग की कंडीशन है, वैसे अन्यत्र नहीं बताई जाती है। परंतु जो करण रूप परिणाम है वहाँ पर शुरुआत में तो होगा ना, उसके बाद में भले वो तो जिसको भजनीय कहते हैं, हाँ। अभी हम द्वितीय भाग की बात करेंगे, अनिवृत्तिकरण गुणस्थान के द्वितीय भागवर्ती जीवों के दूसरा भाग है ना, अभी क्या है वेद का उदय मिट गया है, अभी चार कषाय है, कषाय है सारे, हाँ यानी एक एक कषाय का उदय मिटेगा और बंद भी मिटेगा उसका। देखो उदय में ऐसा है, श्रेणी चढ़ते समय कोई क्रोध से चढ़ेगा, कोई मान से, कोई माया से, कोई लोभ से, किसी भी कषाय से क्यों न चढ़ो, पहला जो है क्रोध वेदक काल कहेंगे उसको, उसमें क्रोध मान माया लोभ चारों का बंध है, यानी जो माया से ही चढ़ता है, लोभ से या मान से चढ़ता है, उसको भी यहाँ तक ही क्रोध का बंध है। ये जरूरी नहीं कि हर एक को पहले क्रोध का उदय होवे, फिर मान का, फिर माया का, फिर लोक का, परंतु यहाँ चार कषाय है ऐसा कहेंगे, क्योंकि अनेक जीवों की अपेक्षा ये बात चल रही है, तो चारों कषाय है और उसका बंद भी है, तो इसलिए यहाँ चार कषाय कहेंगे, पर वेद नहीं कहेंगे यहाँ पर। अभी यहाँ पढ़ेंगे हम द्वितीय भागवर्ती जीवों के ओघाला कहने पर एक नौवा गुणस्थान, एक संगी पर्याप्त जीव समास, छहो पर्याप्तिया, दसो प्राण। अब यहाँ परिग्रह संज्ञा होती है, एक ही है, इसका टेबल 440 पृष्ठ पर है, यहाँ जो टेबल है वो प्रथम भाग का है, उसके साथ मत देखना। तो ये परिग्रह एक संज्ञा है, एक परिग्रह संज्ञा के होने का यह कारण है के अंतरकरण करने के अनंतर अंतर्मूर्त जाकर वेद का उदय नष्ट हो जाता है। अंतरकरण का अर्थ ऐसा है, अब ये श्रेणी चढ़ता है तो कितने में अंतर करता है, किस में करेगा, चारित्र मुनि की 21 प्रकृतियों में अंतर करता है, और यहाँ उदय रूप प्रकृतियां कितनी है याद है, दो ही है, एक कोई वेद एक कोई कषाय, और अंतर कितने में करता है, 21 में करता है, जो उदय रूप है उसमें अंतर्मूर्त प्रमाण प्रथम स्थिति छोड़ता है और ऊपर अंतर करता है, और जो यहाँ उदय रूप नहीं है वो आवली मात्र पहली स्थिति बनती है और ऊपर सारा अंतर होता है, और वो आवली मात्र निषेक भी उदय रूप होकर अन्य से उदय रूप होकर नष्ट हो जाते हैं। ख्याल में आई ना बात, पूरे 21 में अंतर किया और उदय तो दो का ही है। अब जो क्रोध का उदय होगा ना, हाँ अंतर जो किया जाता है वो पहले से ही किया जाए, निवृत्तिकरण में किया जाता है, वो तो मेरे ख्याल से संख्यात भाग बीत जाने पर होगा, पहले समय से नहीं अंतर होता। जैसे हमने उपशम सम्यक तो में देखा था, वैसे यहाँ पर देखना है। तो अंतर किया, अभी वेद का भी उदय है और किसी एक कषाय का भी उदय है। अभी ये दूसरे भाग में वो उदय मिटेगा, उसका जो कुछ उपशम क्षय, उपशम की बात है, क्षय की बात है, उसका प्रोसेस में नहीं जाएंगे। बाद में क्या होगा, अभी क्रोध का जिसका उदय होगा, फिर वो क्रोध का उदय जो अंतर्मूर्त काल के बाद क्या होगा, उसका क्षय उपशम करते करते फिर मान के परमाणु नीचे आकर उसकी रचना हो जाएगी, एक के बाद एक रचना होती है उसकी। एक के बाद एक उदय होता है, तब तक वो परमाणु ऊपर रहे, द्वितीय स्थिति में पड़े हैं। जब मान का अंतर्वृत्त समाप्त होता है, उसकी आवली बचती है, उसका उदय नहीं होता, परंतु उच्चिष्टावली से वो नहीं, उसके पहले से वो अंतर्मूर्त प्रमाण उसकी ही रचना, मान की ही उदय रूप रचना है। वो ऊपर पड़े हैं, ऊपर पड़े उपशम या क्षय हो जाता है उसका। ये सब उसकी जो विशेषताएं अलग अलग है, कौन से यानी उसमें बहुत सारे अश्वकरण कृष्टिकरण वगैरह वगैरह, उसकी सब विशेषताएं, उसका प्रोसेस अलग है। हम यहाँ बिल्कुल स्थूल रूप से देखते हैं कि अभी द्वितीय भाग की चर्चा चल रही है अपनी, तो हमने देखा कि नहीं है, तो यहाँ कहते हैं परिनिग्रह संज्ञा क्यों कही, क्योंकि वेद का उदय मिटता है। वो कब मिटता है, अंतर किया, अंतरकरण हो गया, अंतरकरण के पश्चात ये तो फिर अवेदी हो जाता है। यहाँ लिखा ना, अंतरकरण करने के अनंतर अंतर्मूर्त जाकर वेद का उदय नष्ट हो जाता है, तब तक वेद का उदय है। इसलिए द्वितीय भागवर्ती जीव के मैथुन संज्ञा नहीं रहती, उसका उदय नष्ट हुआ, अभी इसकी संज्ञा नहीं रहे। संज्ञा आलाप के आगे, आलाप यानी उसका जो कथन, पहले भाग तक वेद है, दूसरे है ही नहीं तो उसको नाश हुआ कहेंगे, तब तक उसका पहला भाग चल रहा था। जब तक वेद का उदय है तब तक पहला भाग, आगे मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस काय, पूर्वोक्त नव योग, हमने देखे ना मन के वचन के और औदारिक का योग, अब उसको अपगत वेद कहेंगे। वेद के नीचे पहले भाग ने हमने तीन वेद लिखे थे, अब यहाँ अपगत वेद लिखेंगे, यानी या जीरो लिखेंगे उसके नीचे। चारों कषाय, भले मान का उदय है तो भी चारों कषाय कहेंगे यहाँ पर। केवल ज्ञान के बिना चार ज्ञान, सामायिक छेदोपस्था में दो संयम, केवल दर्शन के बिना तीन दर्शन, द्रव्य से छह लेशाएं, भाव से शुक्ल लेशा, भव्य सिद्धि, औपशमिक और क्षायिक, ये दो सम्यक्त्व, संगी आहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। इसका टेबल यहाँ 440 पृष्ठ पर है। यहाँ पर भी लेशा में नीचे हमने भाव से शुक्ल वहां ऐड किया था, शु लिखा था वहां पर। अब तीसरा भाग की बात चली, अनिवृत्तिकरण गुणस्थान के तृतीय भागवर्ती जीवों के ओहालाप कहने पर, यहाँ एक कषाय कौन सी, क्रोध नहीं रहेगा, यानी यहाँ तीन ही कषाय कहेंगे हम। एक नौवा गुणस्थान, एक संगी पर्याप्त जीव समास, छहो पर्याप्तिया, दशो प्राण, परिग्रह संज्ञा, ये परिग्रह संज्ञा भी दसवें के अंत तक कहेंगे हम। मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस काय, पूर्वोक्त नव योग, क्रोध कषाय के बिना तीन कषाय, ये इसमें विशेषता है। तीन कषायों के होने का यह कारण है कि तीनों वेदों के क्षय हो जाने पर पुनः एक अंतर्मूर्त जाकर क्रोध कषाय का उदय नष्ट हो जाता है, यानी यहाँ क्रोध वेदक काल कहेंगे, यहाँ तक है, इसलिए इस भाग में क्रोध कषाय नहीं है। आगे केवल ज्ञान के बिना चार ज्ञान, सामायिक और छेदोपस्थापना ये दो संयम, केवल दर्शन के बिना तीन दर्शन, द्रव्य से छह लेशाएं, भाव से शुक्ल लेशा, भव्य सिद्धि, औपशमिक और क्षायिक, ये दो सम्यक संगिक आहारक साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी। अभी एक एक कषाय कम होगी, बाकी तो बाकी वैसी बातें सब रहेगी। अब अनिवृत्ति करण गुणस्थान के चतुर्थ भागवर्ती जीवों के ओह आलाप कहने पर उन्होंने तो पूरा पूरा लिख दिया है, हम भी पढ़ेंगे। एक नौवा गुणस्थान, एक संगी पर्याप्त जीव समाज, पहले में वेद है, वेद जाता नहीं है, वेद है, दूसरे में अपगत वेद है और चार कषाय है, तीसरे में तीसरे भाग में तीन कषाय थे, क्योंकि क्रोध दूसरे भाग में था वो नहीं रहा। चौथे भाग में क्या होगा? हाँ, क्रोध मान दोनों गए, दो कषाय है, और पांचवे भाग में एक कषाय है, यानी कषाय में डिफरेंस होगा। भी देखो, अनिवृत्तिकरण के पहले भाग में वेद भी है और कषाय भी है, वहां मैथुन संज्ञा भी। आप क्यों आपस में बोल रहे कि मुझे पूछ रहे? अपगत यानी वेद नष्ट हो गया, वेद का उदय नहीं है और अभी वो इसलिए जीरो लिखना वहां पर। अभी हम चतुर्थ भाग कह रहे, हमने पढ़ा एक नौवा गुणस्थान, संगी पर्याप्त जीव समास, छहो पर्याप्त या दसो प्राण, एक परिग्रह संज्ञा। अब 441 पर आना, और चतुर्थ भाग लिखा है यहाँ पर नंबर 20 के टेबल में, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रसकाय, पूर्वोक्त नव योग, अपगत वेद, इसलिए वहां जीरो लिखा है। देखो, माया और लोभ ये दो कषायें होती है। अब मान का भी उदय मिट गया है, दो कषायों के होने का यह कारण है, क्रोध कषाय के उदय नष्ट होने पर पुनः एक अंतर्मूर्त आगे जाकर मान कषाय का उदय भी नष्ट हो जाता है, इसलिए मान कषाय इस भागवर्ती जीवों के नहीं है, ना उदय है ना उसका बंद है। आगे केवल ज्ञान के बिना चार ज्ञान, सामायिक और छेदोपस्थापनाएं दो संयम, केवल दर्शन बिना तीन दर्शन, द्रव्य से छह लेशाएं, भाव से शुक्ल लेशा, भव्य सिद्धि, औपशमिक और क्षायिक दो सम्यक्त्व, संगिक आहारक साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। यानी उसमें कोई बात नहीं कि तो केवल यहाँ पहले भाग में मैथुन भी है, परिग्रह भी है और वेद भी है, दूसरे भाग में अपगत वेदी हो गए, चार कषाय है, तीसरे भाग में तीन कषाय है, चौथे भाग में दो कषाय है, अब पांचवे भाग की बात करेंगे। अनिवृत्तिकरण गुणस्थान के पंचम भागवर्ती जीवों के ओह आलाप कहने पर एक नौवा गुणस्थान, एक संगी पर्याप्त जीव समास, छहो पर्याप्तियां, दशो प्राण, परिग्रह संज्ञा, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस्काय, पूर्वोक्त नव योग, अपगत वेद। अब एकमात्र लोभ कषाय है, इसको लोभ वेदक काल यहां से चालू है, दसवें में भी चलेगा, वहां उदय है, बंद नहीं रहेगा दसवें में। लोभ कषाय होने का यह कारण है, मान कषाय के उदय के नष्ट हो जाने पर पुनः एक मंत्र मुहूर्त आगे जाकर माया कषाय का उदय भी नष्ट हो जाता है, इसलिए माया कषाय इस भाग में नहीं है। आगे केवल ज्ञान के बिना चार ज्ञान, सामायिक और छेदोपस्थापनाएं दो संयम, ये नवे के अंत तक ये संयम कहेंगे, दसवें का संयम तो सूक्ष्म सांप्राय होगा। केवल दर्शन के बिना तीन दर्शन, द्रव्य से छह लेशाएं, भाव से शुक्ल लेशा, भव्य सिद्धि, औक्षमिक और क्षायिक ये दो सम्यक्त्व, दो सम्यक्त्व इसलिए कि द्वितीय उपशम या क्षायिक सम्यक्त्व के साथ श्रेणी चढ़ता है, उपशम श्रेणी, और क्षपक श्रेणी तो क्षायिक वाला चढ़ता है। यहाँ क्षपक है क्या उपशमक है ये कोई भेद करके कथन नहीं है। संगिक आहारक साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। ये पांचवे वाला टेबल 442 पेज पर है, वो उसमें करेक्शन करना है जरा। नंबर 21 का टेबल है, देखो गति एक लिखा है उसमें म लिखना, यानी मनुष्य गति। ज्ञान चार के लिखा है तो के नीचे वीना लिखना, केवल ज्ञान वीना। और लेशा में हर जगह हमने भाव के बाद नीचे शु लिखा है शुक्ल लेशा के लिए, वो भी वहां ऐड करना। वो किया हुआ होगा ना पहले, पहली बार आपने चेक
केवल ज्ञान
के बिना लिखा होगा ना। ये अपनी दूसरी बार चल रही ना, पहले हमने करेक्शन किया हुआ था इसको। अब यहाँ 442 पेज पर आया। सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थानवर्ती जीवों के ओग आलाप कहने पर, ये नंबर 22 वाले टेबल के साथ आप इसको टैली कर सकते। एक दसवां गुणस्थान, एक संगी पर्याप्त जीव समास, छहो पर्याप्तिया, दसो प्राण। अभी सूक्ष्म परिग्रह संज्ञा, उसमें सूक्ष्म ऐसा कुछ भेद नहीं करते, परंतु सूक्ष्म लोभ है ये बताने के लिए परिग्रह संज्ञा है वहां पर, फिर भी उन्होंने सूप लिख दिया सूक्ष्म परिग्रह, मैंने सूक्ष्म लोभ है बताना था। मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रसकाय, ये नव योग वही है, चारों मनोयोग, चारों वचन योग और एक औदारिक काय योग। अपगत वेदी, इसलिए वहां जीरो लिखेंगे। सूक्ष्म लोभ कषाय है, कषाय में एकमात्र सूक्ष्म लोभ है यहाँ पर, उसका उदय है इसलिए वहां सूक्ष्म कषाय है, यानी लोभ है ऐसा कहेंगे, बंध नहीं है। केवल ज्ञान के बिना चार ज्ञान। अभी संयम में सूक्ष्म सांप्राय विशुद्धि संयम कहे, नवे में तो हम वो तो नवे तक सामायिक छेदोपस्थापना कह रहे थे। केवल दर्शन के बिना तीन दर्शन, द्रव्य से छह लेशा है और भाव से शुक्ल लेशा
लिखा है।
हाँ वो लिखा है, भाव से शु भव्य सिद्धिक, औपशमिक और क्षायिक दो सम्यक्त्व, संगिक आहारक और साकार अनाकार उपयोगी होते हैं। अब उपशांत कषाय गुणस्थानवर्ती, वो स्थान लिखना बीच में, गुणवर्ती हुए ना, उपशांत कषाय गुणस्थानवर्ती जीवों के ओ हालाप कहने पर, एक ग्यारहवा गुणस्थान, एक संगी पर्याप्त जीव समास, छहो पर्याप्तिया, दसो प्राण, उपशांत संज्ञा कहेंगे उसको। ग्यारहवा गुणस्थान उपशम श्रेणी में, उसको उपशांत संज्ञा कहा, यानी संज्ञा नहीं है। और बारहवें में क्षीण संज्ञा कहेंगे, पहले आई थी बात वो नष्ट हो चुकी, फिर इन्होंने उसको उपशांत संज्ञा कह दिया। संज्ञा के उपशांत होने का यह कारण है, यहाँ पर मोहनीय कर्म का पूर्ण उपशम रहता है। संज्ञा जो है आहार भय मैथुन परिग्रह, उसमें कर्मों के उस कर्मों के उदय निमित्त थे। आहार संज्ञा में तो असाता वेदनीय थी और बाकी में तो मोहनीय का था, भय में मैथुन में और परिग्रह में। अब यह पूर्ण रूप से उपशम है, इसलिए उसके निमित्त से होने वाली संज्ञाएं भी उपशांत ही रहती है, अतएव यहाँ उपशांत संज्ञा कही। इस सब के ऊपर बिंदी देना, उपशांत संज्ञा। आप में है क्या करीब से? वैसा ही है, नया पुस्तक है ना। आगे मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रसकाय, चार मनोयोग, चार वचन योग और औदारिक काय योग, ये नौ योग। देखो ग्यारहवें गुणस्थान का काल इतना छोटा है, फिर भी इसमें भी योगों का एक ही योग पूरे ग्यारहवें तक नहीं रहता है, यानी योग का पलटना उसके भी छोटे काल में होता है। अपगत वेद, आप कषाय के नीचे उसको जीरो लिखेंगे, ये उपशांत कषाय है, अकषाय है। केवल ज्ञान के बिना चार ज्ञान। अब संयम का नाम है यथाख्यात शुद्धि संयम। केवल दर्शन के बिना तीन दर्शन, द्रव्य से छोलेशाएं और भाव से शुक्ल लेशा होती है। देखो शंकाकार पूछ रहे, जबकि इस गुणस्थान में कषायों का उदय नहीं पाया जाता तो फिर यहाँ शुक्ल लेशा किस कारण से कही? क्योंकि कषायों से अनुरंजित योग का परिणाम, ऐसी परिभाषा देखी थी। समाधान, यहाँ पर कर्म और नो कर्म के लेप के निमित्त भूत योग का सद्भाव पाया जाता है, इसलिए शुक्ल लेशा कही है। क्या कहना चाहते हैं? ये योग के कारण कर्मों का आना होता है, और लेशा का उन्होंने यहाँ कौन सी परिभाषा यहाँ पर उन्होंने स्वीकृत की थी? जो आत्मा को कर्मों से लिमती उसको लेशा का, वो कषाय से अनुरंजित वाला उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था। तभी बताया था कि यदि ये कहेंगे तो 11वें 12वें में हमको लेशा नहीं ऐसा कहना पड़ेगा। जब उन्होंने पहली उसकी परिभाषा बनाई थी ना, तभी बताया था लेशा में, शुरुआती में, शुरुआत में जहाँ लेशा की बात है, आलाप शुरू करने के पहले। इसमें क्या कहे, पहले भाग में मार्गणा के कथन में था। आत्मा को जो लिंपन करती है ना, लेपन, लेप करती है, तो यहाँ कर्मों का भी बंध है और शरीर के परमाणुओं का भी ग्रहण चल रहा है। ये समाधान हो गया। लेशा के आगे के कॉलम देखते हैं। भव्य सिद्धिक, औक्षमिक और क्षाय के दो सम्यक्त्व, संगिक, आहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। अब ये टेबल में भव्य के नीचे सम लिखा है, वो भ करना, भव्य है वो, उस सम निकाल देना, उस वहां भ लिखना। समझ में आया शोभाबेन? 443 पेज पर 23 नंबर का जो टेबल है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, आपके पास पुस्तक नहीं है? नहीं है तो उसमें वो भव्य का जो कॉलम, भव्य का जो कॉलम है, एक के नीचे सम लिखा है, उसको सम निकाल कर भ लिखना,
और आगे सम्यक्त्व के ऊपर अनुस्वार है,
और वो सम्यक्त्व वाला कॉलम है भ के बाद, वो सम लिखा है, वो स चाहिए, बिंदी नहीं चाहिए, क्योंकि वो सम्यक्त्व का कॉलम है। आगे बढ़े। क्षीण कषाय गुणस्थान वर्ती जीवों के उघालाप कहने पर, अभी एक क्षपक श्रेणी वाला गुणस्थान है, एक 12वां गुणस्थान, एक संगी पर्याप्त जीव समास, 6 पर्याप्तिया, 10 प्राण, क्षीण संज्ञा होती है। ऊपर उपशांत संज्ञा कहा था, यहाँ क्षीण संज्ञा, वहां 11वां गुणस्थान था, यहाँ 12वां गुणस्थान। क्षीण संज्ञा के होने का यह कारण है, कषायों का यहाँ पर सर्वथा क्षय हो जाता है, इसलिए संज्ञाओं का क्षीण हो जाना स्वाभाविक ही है, या क्षीण ने पूरे नष्ट हो जाना। आगे, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रसकाय, चारों मनोयोग, चारों वचन योग और औदारिक काय योग, ये 9 योग, अपगत वेद, क्षीण कषाय जिसको अकषाय भी कहेंगे, केवल ज्ञान के बिना चार ज्ञान, संयम में यथाख्यात शुद्धि संयम, दर्शन में केवल दर्शन के बिना तीन दर्शन, द्रव्य से छो लेशाएं, भाव से शुक्ल लेशा, फिर भव्य सिद्धिक, क्षायिक सम्यक्त्व, ऊपर तो औषमिक और क्षायिक दोनों लिए थे, यहाँ पर क्षायिक सम्यक्त्व, संगिक, आहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। इसका आलाप जो है, टेबल जो है 444 पेज पर नीचे लिखा है, वहाँ ठीक है, वहाँ पर भी भ के बाद वो सम लिखा है ना, सम्यक्त्व के कॉलम में, वो बिंदी नहीं चाहिए थी वहाँ पर। अब हम पढ़ेंगे संयोग केवलियों के ओग आलाप कहने पर। एक तेरवा गुण स्थान संगी पर्याप्त और संगी अपर्याप्त, ये दो जीव समास। देखो अपर्याप्त कहा, ये तेरवे गुण स्थान में, छठे में कहा तो आहार शरीर बनाने की अपेक्षा कही थी। छह पर्याप्ति और छह अपर्याप्तियां होती है लिखा। फिर शंका, कपाट प्रतर और लोकपुरण समुदाय को प्राप्त केवली पर्याप्त है या अपर्याप्त? समाधान, उन्हें पर्याप्त तो माना नहीं जा सकता, क्योंकि औदारिक मिश्र का योग अपर्याप्तकों के होता है, इस सूत्र से उनके अपर्याप्तपना सिद्ध है, इसलिए वे अपर्याप्तक ही है। ये तीनों ही कपाड़ भी, प्रतर भी, लोकपुरण भी। फिर शंका, सम्यक मिथ्या, ये कपाट समझते ना, पहला समय वो दंड है, आत्म प्रदेश गोल खंबे के समान ऊपर से नीचे तक फैलते वात वाले बिना, दूसरे समय में क्या होता है, ऐसे फैलते हैं, पूर्व की तरफ मुंह है तो दक्षिण उत्तर फैलेंगे, उत्तर की तरफ मुंह है तो पूर्व पश्चिम फैलेंगे, यानी उतनी जो उसका व्यास है उस प्रमाण में, कोई 12 अंगुल का है, कोई 36 अंगुल का है, परंतु वात वाले को छोड़कर, तो ऐसे फैले हैं आड़े, तो फिर आगे पीछे भी फैलेंगे, वात वाले को छोड़ेंगे, वह है प्रतर। अब लोकपुरण में पूरे वात वलय में भी फैलते, तो पहले वात वलय को छोड़कर जब कहा था तो नीचे तो 20,000 योजन साइड में, नीचे एक राज्यों तक 20,000 योजन, ऊपर तो वो 7, 5, 4 कम ज्यादा होता है उसके, उस अनुसार उस वहां पर ले लेना, और ऊपर आठवीं पृथ्वी के ऊपर कितना है, 2 कोस 1 कोस और 1575 धनुष, ये इतना छोड़कर था, अब उसमें भी आत्म प्रदेश फैले, वो लोक पूर्ण हो जाएगा, तो वहां उसको अपर्याप्त कहा, क्योंकि वहां कार्मण का योग है और यहां औदारिक मिश्र का योग। फिर शंका, समय मिथ्या दृष्टि है, संयता संयत और संयतों के स्थान में जीव नियम से पर्याप्तक होते हैं, इस प्रकार सूत्र निर्देश होने के कारण यही सिद्ध होता है कि सहयोगी को छोड़कर अन्य औदारिक मिश्र का योग वाले जीव अपर्याप्तक है। अब ये उसकी जो शंका है उसके अभिप्राय को समझा रहे, यहां शंकाकार का यह अभिप्राय है, औदारिक मिश्र योग वाले जीव अपर्याप्तक होते हैं, यह सामान्य विधि है, और सम्यक मिथ्या दृष्टि, संयता संयत और संयत जीव पर्याप्तक होते हैं, यह विशेष विधि है, और संयतों में सहयोगियों का अंतर्भाव हो ही जाता है, यानी जब कहेंगे संयत जीव पर्याप्त होते हैं तो उसमें सहयोगी आ गए, ये उनका कहना है, अतएव विशेष विधि ना सामान्य विधिर बाध्यते, इस नियम के अनुसार उक्त विशेष विधि से सामान्य विधि बाधित हो जाती है, यानी सामान्य जो कथन किया कि संयतों के संयत तो पर्याप्त होते हैं और विशेष में बता रहे जहां औदारिक मिश्र है वो तो अपर्याप्त होते हैं, तो सामान्य और विशेष में डिफरेंस आ रहा है, जिससे कपाटादि समुद्घातगत केवली को अपर्याप्त सिद्ध करना असंभव है, तो ये दो अलग अलग कहते हैं, इसलिए उनको अपर्याप्त नहीं कह सकते, ये शंकाकार की शंका है। समाधान, ऐसा नहीं है, क्योंकि यदि विशेष विधि से सामान्य विधि बाधित होती है, इस नियम के अनुसार औदारिक मिश्र का योग वाले जीव अपर्याप्तक होते हैं, यह सामान्य विधि, सम्यक मिथ्या दृष्टि आदि पर्याप्त होते हैं इससे बाधी जाती है, तो आहार मिश्र का योग वाले प्रमत्त संयतों को भी पर्याप्त ही मानना पड़ेगा, वहां पर भी ये रूल लगा लो तो वहां पर भी उनको पर्याप्त कहना पड़ेगा।
अभी उनका ये प्रश्न,
हाँ उनका जो प्रश्न था ना, वहां अपर्याप्त क्यों कह रहे हैं, यानी अपर्याप्त ने भी विग्रह गति से आया है और उसके पहले शुरुआत होती है वो बात नहीं, नया शरीर बना रहे हैं उस संबंधी पर्याप्तियां हो रही हैं। क्योंकि वे भी संयत है, किंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि आहार मिश्र का योग अपर्याप्त कौन के होता है, इस सूत्र से, सूत्र में ही बता दिया है, वे अपर्याप्त ही सिद्ध होते हैं। फिर शंका, आहार मिश्र का योग अपर्याप्त कौन के ही होता है, यह सूत्र अनवकाश है, अर्थात इस सूत्र की प्रवृत्ति के लिए कोई दूसरा स्थल नहीं है। अतः इस सूत्र से संयतों के स्थान में जीव नियम से पर्याप्तक ही होते हैं यह सूत्र बाधा जाता है, यानी इसके कारण वहां बाधा आती है। किंतु औदारिक मिश्र का योग अपर्याप्तकों के ही होता है, इस सूत्र से संयतों के स्थान में जीव पर्याप्तक ही होते हैं यह सूत्र नहीं बाधा जाता, क्योंकि औदारिक मिश्र का योग अपर्याप्तकों के होता है यह सूत्र सावकाश, स्वावकाश और वहां था अनवकाश, यानी उसके कोई जगह नहीं उसकी होने के कारण, अर्थात इस सूत्र की प्रवृत्ति के लिए सहयोगियों को छोड़कर अन्य स्थल भी होने के कारण निर्बल है। क्या कहना चाहते हैं, अन्यत्र भी वो औदारिक मिश्र जहां जहां है वहां तो अपर्याप्त होते हैं, इसलिए इस सूत्र के साथ बाधा नहीं आती और वो आहार के साथ आती है, ये उनका कहना है। अतः आहारक समुद्घातगत जीवों के जिस प्रकार अपर्याप्त बना सिद्ध किया जा सकता है, उस प्रकार समुद्घात केवलियों के नहीं किया जा सकता है। यानी बार बार लौटकर उसी पॉइंट पर फिर आ गए। समाधान, नहीं, क्योंकि संयतों के स्थान में जीव नियम से पर्याप्तक होता है यह सूत्र भी सावकाश देखा जाता है, अर्थात सहयोगी को छोड़कर अन्य स्थल में भी इस सूत्र की प्रवृत्ति देखी जाती है, अतः निर्बल है और इसलिए औदारिक मिश्र का योग अपर्याप्तकों के ही होता है इस सूत्र की प्रवृत्ति को नहीं रोक सकता, यानी उसमें कोई बाधा नहीं आती है। शंका, पूर्वोक्त समाधान से यद्यपि यह सिद्ध हो गया कि पूर्वोक्त दोनों सूत्र सावकाश होते हुए भी सहयोगी गुणस्थान में युगपत प्राप्त है, फिर भी परोविधिर बाधको भवती, अर्थात परविधि बाधक होती है, इस नियम के अनुसार संयतों के स्थान में जीव नियम से पर्याप्तक होते हैं इस सूत्र के द्वारा औदारिक मिश्र का योग अपर्याप्तकों के ही होता है यह सूत्र बाधा जाता है, क्योंकि यह सूत्र पर है। ये उनकी जो चर्चा चल रही है ऐसा ये कथन नहीं हो सकता। समाधान, नहीं, क्योंकि परोविधिर बाधको भवती, इस विषय में पर शब्द इष्ट अर्थात अभिप्रेत अर्थ का वाचक है। पर शब्द का ऐसा अर्थ लेने पर जिस प्रकार, ये हम फुटनोट बाद में देखेंगे, संयत स्थान में जीव नियम से पर्याप्तक होते हैं इस सूत्र से औदारिक मिश्र का योग अपर्याप्तकों के होता है यह सूत्र बाधा जाता है, उसी प्रकार पूर्व अर्थात औदारिक मिश्र का योग अपर्याप्तकों के होता है इस सूत्र से संयत स्थान में जीव नियम से पर्याप्तक होते हैं यह सूत्र भी बाधा जाता है। अतः शंकाकार के पूर्वोक्त कथन में अनेकांत दोष आ जाता है। अभी हम आते हैं 445 पेज पर, नीचे क्या क्या लिखा है देखो। आहार मिश्रकाय उपजतानम, उसके लिए एक आंकड़ा लिखा है, वो तो जीवकांड का सूत्र बताया। दो आंकड़ा कहाँ लिखा है, संजय दत्त ठाणे नियमापजत्ता, वो तीन है, अनवगासत्ता दो, अनवकाश अंतरंगात अपि अपवादो बलियान, येन न अप्राप्ते यो विधि आरभ्यते स तस्य बाधको भवति। किसमें से लिया है? जो अभी हमने पढ़ा ना उसी की बात है, फिर वो तो न्याय की भाषा ही है, उसको छोड़ देते हम। यानी कोई कोई जो कथन होते उसमें कहीं अपवाद भी होते, उसकी चर्चा वहां पर है। 446 पर आए हम। अब नई शंका, जबकि कपार समुद्घात केवली अवस्था में अभिप्रेत होने के कारण औदारिक मिश्र का योग अपर्याप्तकों के होता है, यह सूत्र पर है, तो संयत स्थान में जीव नियम से पर्याप्तक होते हैं, इस सूत्र में आए हुए नियम शब्द की क्या सार्थकता रह गई? और ऐसी अवस्था में यह प्रश्न उत्पन्न होता है, उक्त सूत्र में आया हुआ नियम शब्द सप्रयोजन है कि निष्प्रयोजन? यानी वो नियम बताया और फिर उसमें लिए अपवाद बता रहे, तो ये कैसे सिद्ध होगा? तो ये नियम शब्द वहाँ कुछ उसका अर्थ है भी या नहीं है? समाधान, इन दोनों विकल्पों में से दूसरा विकल्प तो माना नहीं जा सकता। निष्प्रयोजन तो कोई सूत्र हो ही नहीं सकते, क्योंकि पुष्पदंत के वचन से निकले हुए तत्व में निरर्थकता का होना विरुद्ध है। ये प्रथम खंड तो इन्हीं की रचना है ना, पुष्पदंत के वचन। और सूत्र की नित्यता का प्रकाशन करना भी नियम शब्द का फल नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा मानने पर जिन सूत्रों में नियम शब्द नहीं पाया जाता है उन्हें अनित्यता का प्रसंग आ जाएगा। यानी जहाँ नियम नहीं लिखा है तो वहां तो वो हो ही नहीं सकता, ऐसा कहना पड़ेगा। परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर औदारिक का योग पर्याप्त को उनके होता है, इस सूत्र में नियम शब्द का अभाव है। यानी ये नियम शब्द हर जगह नहीं डाला है, तो पर्याप्तकों के औदारिक का योग होता है, वहां नियम कहाँ बताया? तो क्या अपर्याप्तों के हो सकता है? ऐसा नहीं है। सूत्र है तो वो तो बिल्कुल सूत्र है, नहीं वो तो बिल्कुल सत्य है। वहां नियम शब्द नहीं भी लिखे तो भी उसी का वही अर्थ होता है। तो यहां उस सूत्र में नियम शब्द का अभाव होने से अपर्याप्तकों में भी औदारिक का योग के अस्तित्व का प्रसंग प्राप्त होगा, जो कि इष्ट नहीं है। अतः सूत्र में आया हुआ नियम शब्द ज्ञापक है, नियामक नहीं। यदि ऐसा न माना जाए तो उसके अनर्थक पने का प्रसंग आ जाएगा। फिर शंका, इस नियम शब्द के द्वारा क्या ज्ञापित होता है, यानी क्या वहां कहा जाता है? उसका समाधान, इससे यह ज्ञापित होता है कि सम्यक मिथ्या दृष्टि, संयता संयत और संयत स्थान में जीव नियम से पर्याप्तक होते हैं। यह सूत्र अनित्य है, अपने विषय में सर्वत्र समान प्रवृत्ति का नाम नित्यता है। और अपने विषय में ही कहीं प्रवृत्ति हो और कहीं न हो, इसका नाम अनित्यता है। इससे उत्तर शरीर को उत्पन्न करने वाले सम्यक मिथ्या दृष्टि और संयता संयतों के तथा कपाट प्रतर और लोकपूरण समुद्घात को प्राप्त केवलियों के अपर्याप्तपना सिद्ध हो जाता है। ओहो, वो तो विक्रिया से दूसरा शरीर बनाते हैं ना, औदारिक की विक्रिया करेंगे या वैकरी की विक्रिया करेंगे? करेंगे ना, अंतर्मूर्त काल है उसका। अरे देव नहीं करेंगे क्या? मनुष्य भी तो कर सकते हैं, मिथ्या दृष्टि भी कर सकते हैं। मिथ्या दृष्टि भी औदारिक की भी विक्रिया करते हैं और उनके भी वैक्रिक भी होता है, उसको भी विक्रिया कहेंगे। औदारिक की विक्रिया करेंगे वो, है तो औदारिक शरीर, परमाणु औदारिक के ही है, उसी की विक्रिया करते हैं। विशेषार्थ में कुछ कहेंगे, देखो सम्माम इच्छा इट्ठी संजदा संजद संजद ठाणे नियमा पज्जत्ता, इस सूत्र को अनित्य बतला कर उत्तर शरीर को उत्पन्न करने वाले समय मिथ्या दृष्टि और संयता संयतों को भी जो अपर्याप्तक सिद्ध किया है। देखो क्या कहना चाहते हैं, चौथे गुणस्थान वाले तो पर्याप्त अपर्याप्त दोनों होते हैं, क्योंकि मरकर भी जाते विग्रह गति में जाते वहां शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं होती तब तक है, तो तीसरे पांचवे वाले को भी कैसे अपर्याप्त सिद्ध कर रहे हैं। तो कहते उस गुणस्थान में रहते हुए उत्तर शरीर बनाएंगे, यानी विक्रिया से दूसरा शरीर बनाएंगे, तो उसकी बात है यहाँ पर। देखो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि तीसरे गुणस्थान में उत्तर वैक्रिक और उत्तर औदारिक, उत्तर यानी मूल शरीर और एक्स्ट्रा एक शरीर बनाया उसको उत्तर वैक्रिक कहेंगे। देवों के मूल शरीर वैक्रिक है और उन्होंने और एक उस संबंधी कुछ बताएंगे उत्तर औदारिक तथा पांचवें गुणस्थान में उत्तर औदारिक को उत्पन्न करने वाले। पांचवें गुणस्थान में उत्तर वैक्रिक नहीं कहा क्योंकि देवों में पांचवा गुणस्थान नहीं है, मनुष्य जो उत्पन्न करेंगे विक्रिया से वो उत्तर औदारिक होता है, औदारिक शरीर की विक्रिया है, विक्रिया से दूसरा औदारिक शरीर उत्पन्न होता है, शरीर वाला नहीं, यानी उत्तर औदारिक कहना उसको। पांचवें गुणस्थान में उत्तर औदारिक को उत्पन्न करने वाले जीव जब तक उस उत्तर शरीर की पूर्णता नहीं कर लेते तब तक अपर्याप्त कहे गए हैं। जिस प्रकार तेरहवें गुणस्थान में पर्याप्त नाम कर्म का उदय रहते हुए और शरीर की पूर्णता होते हुए भी योग की अपूर्णता से जीव अपर्याप्त कहा जाता है, औदारिक मिश्र योग है ना, इसलिए उसको अपर्याप्त कहेंगे। उसी प्रकार यहाँ पर भी पर्याप्त नाम कर्म का उदय रहते हुए, क्योंकि पर्याप्त कौन के वो उत्तर शरीर बनेगा, योग की पूर्णता रहते हुए, यहाँ तो योग की भी पूर्णता है, पर्याप्त नाम कर्म का उदय है, योग की पूर्णता रहते हुए मूल शरीर की भी पूर्णता रहते हुए केवल उत्तर शरीर की अपूर्णता से अपर्याप्त कहा गया है। वो शरीर बना रहे इसलिए उस अपेक्षा से यहाँ पर्याप्त या नहीं कही उसकी अलग से। फिर शंका, जिसका आरंभ किया हुआ शरीर अर्ध अर्थात अपूर्ण है उसे अपर्याप्त कहते हैं, परंतु संयोगी अवस्था में शरीर का आरंभ तो होता नहीं, अतः संयोगी के अपर्याप्तपना नहीं बन सकता। नहीं, क्योंकि कपाट आदि समुद्घात अवस्था में संयोगी छह पर्याप्ति रूप शक्ति से रहित होते हैं। अतः वह उन्हें अपर्याप्त कहा है, ये केवल वो तो मात्र समुद्घात अवस्था में बताया। केवली समुद्घात में वो भी कपाट आदि, क्योंकि वहां से औदारिक मिश्र है ना। वहां औदारिक शरीर के परमाणुओं का ग्रहण भी नहीं होता है। देखो यहाँ क्या फिर पढ़ देंगे, कपाट आदि समुद्घात के अवस्था में संयोगी छह पर्याप्ति रूप शक्ति से रहित होते हैं, अतएव उन्हें अपर्याप्त कहा है। संयोगी जिनके पांच भावेंद्रिय भावमन नहीं रहता है, क्या रह गया, कपाट आदि, हाँ कपाट प्रतर वो फिर कपाट तक, तो छह पर्याप्ति रूप शक्ति से रहित है, यानी उस पर्याप्तियों का वहां कोई कार्य भी नहीं रहेगा। अब कहते हैं परसों हम ढूंढ रहे थे ना, वो यहाँ मिलेगा शायद। संयोगी जिनके पांच भावेंद्रिय और भावमन नहीं रहता, अतः इन छह के बिना चार प्राण पाए जाते हैं, तथा समुद्घात की अपर्याप्त अवस्था में ये हमने जो सहयोगी के प्राण गिने थे वो यहाँ बता रहे, वचन बल और श्वासोच्छ्वास का अभाव हो जाने से, अथवा 13वें गुणस्थान के अंत में आयु और काय ये दो ही प्राण पाए जाते हैं, परंतु कितने ही आचार्य द्रवेंद्रियों के अस्तित्व की अपेक्षा 10 प्राण कहते हैं, परंतु उनका ऐसा कहना घटित नहीं होता, क्योंकि सहयोगी जन के भावेंद्रियां नहीं पाई जाती, इंद्रियों के द्वारा जानने का कार्य नहीं है, तो उनके द्रव्य इंद्रिय प्राण नहीं कहेंगे। पांचों इंद्रियावरण कर्मों के क्षोभशम को भावेंद्रिय कहते हैं। परंतु जिनका आवरण कर्म समूल नष्ट हो गया है उनके वह क्षोभशम नहीं होता, और यदि प्राणों में द्रवेंद्रियों का ही ग्रहण किया जावे तो संगी जीवों के अपर्याप्त काल में 7 प्राणों का अभाव होकर कुल 2 ही प्राण कहे जाएंगे, क्योंकि उनके द्रवेंद्रियों का अभाव होता है, अपर्याप्त अवस्था में द्रवेंद्रिया भी नहीं पूर्ण हुई है। अतः यह सिद्ध हुआ सहयोगी जिनके 4 तथा 2 ही प्राण होते हैं, ये इंद्रिय प्राण है, वो कर्मों का क्षोभशम भी उसमें ले लेना है। आगे के आलाप बता रहे, प्राण आलाप के आगे क्षीण संज्ञा, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रसकाय और 7 योग होते। देखो अभी हम मनु के 4 और वचन के 4 नहीं लेना, 2-2 लेना है। हाँ हाँ, उनका बंद हुआ था, बताना फिर लगाना। साथ है मन के 2 वचन के 2।
हमने प्राण की अपेक्षा से
अयोग केवली को 1 मिले। देखो 7 योग कौन से है आगे इसी का स्पष्टीकरण करते हैं। लिखा यहाँ देखो, सत्य मनोयोग और अनुभय मनोयोग, सत्य वचन योग और अनुभय वचन योग, औदारिक का योग, कपाट समुद्घातगत केवली के औदारिक मिश्र का योग एक समय वाला, और प्रतर तथा लोकपुरण समुद्घातगत केवली के कार्मण का योग, इस तरह लेना। इस प्रकार केवली के 7 योग होते हैं। योग आलाप के आगे अपगत वेद, अकषाय, केवल ज्ञान, ज्ञान में केवल ज्ञान लेना केवल, यथाख्यात शुद्धि संयम, केवल दर्शन, द्रव्य से 6 लेशाएं और भाव से शुक्ल लेशा, भव्य सिद्धिक, शायिक सम्यक्त्व। अब यहाँ संगी में संगी और असंगी से रहित ऐसा अनुभव कहेंगे उसको, आहारी अनाहारी, क्योंकि आहारक भी है अनाहारक भी है। अनाहारक कब है? हाँ 3 समय के लिए, 3 समय के लिए, हाँ प्रतर लोकपूर्ण और प्रतर, हाँ, साकार तथा अनाकार, इन दोनों उपयोगों से युगपद, यह तो युगपद शब्द डालना है उनके लिए। ये सत्य उनके वचन योग भी उपचार से, मनोयोग जो है उपचार से कहे जाते हैं, क्योंकि यहाँ तो क्षोभशम जो है औदारिक मिश्र आहारक है, हमने 3 समय बताए, प्रतर लोकपूरण और प्रतर। औदारिक मिश्रावस्था में तो ग्रहण है परमाणुओं का, तो उनके अनुभव कैसे होगा वचन? तो कहते वो तो उनकी वाणी निकली तो सत्य ही है, और श्रोता के कान में आती है तब उसको जो, हाँ तब तक उसका तो अनुभव है, उसके कुछ बोध नहीं होता है, और कान में पढ़ने पर उसका बोध हो जाता है। हाँ ये हम आए हैं पेज नंबर 449, संयोग केवली में हमने केवल 7 योग देखे थे और बाकी आलाप तो अभी पढ़ लिया हमने। ये जो नया जो पैराग्राफ है वहां से पढ़ेंगे। अयोग केवली गुणस्थानवर्ती जीवों के ओघ आलाप कहने पर, एक 14वां गुणस्थान, एक संगी पर्याप्त जीवन, वो संग शब्द डालना वहां पर, केवल पर्याप्त लिखा है ना, वो संगी पर्याप्त होना चाहिए। छह पर्याप्तियों के होने का यह कारण है, पूर्व से आई हुई पर्याप्तियां तथैव स्थित रहती है, इसलिए यहां पर 6 पर्याप्तियां कही गई है। किंतु यहां पर पर्याप्ति जनित कोई कार्य नहीं होता, अतः आयु नामक एक ही प्राण होता है। जैसे अन्य अन्य जो पर्याप्ति जनित जो भाषा पर्याप्ति से, वचन का जो मन पर्याप्ति से, वो कुछ यहाँ नहीं है, यानी श्वासोश्वास भी नहीं है, भाषा भी नहीं है। शंका, एक आयु प्राण के होने का क्या कारण है, उसका समाधान। ज्ञानावरण कर्म के क्षोभम स्वरूप 5 इंद्रिय प्राण तो अयोग केवली के है नहीं। देखो, जो अपर्याप्त जीव भी जो है ना, हमने नीचे के गुणस्थान में भी देखा था कि अपर्याप्त अवस्था में भी 5 इंद्रिय प्राण कहते हैं, क्योंकि उतना क्षोभम वहां पर है। यहाँ तो क्षोभम भी अभिक्षायक हो गए, क्योंकि ज्ञानावरण आदि कर्मों के क्षय हो जाने पर क्षोभम का अभाव पाया जाता है। आनापान यानी श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन प्राण भी उनके नहीं है। भाषा ने वचन बल, क्योंकि पर्याप्ति जनित प्राण संज्ञा वाली, यानी पर्याप्ति जिसका कारण है और जिनको प्राण कहते हैं, प्राण संज्ञा वाली शक्ति का उनके अभाव है। वो शक्ति वहां नहीं पाई जाती, मन के द्वारा जानने की शक्ति। अभी तो मन के क्या, पूरे आत्मा से केवल ज्ञान से जान रहे हैं, इसलिए वहां अभी वहां उनके भाषा भी नहीं है और श्वासोश्वास, वो योग का निरोध कर लिया पूरा उन्होंने। उनके कायवल नाम का प्राण भी नहीं है, क्योंकि उनके शरीर नाम कर्म के उदय जनित कर्म और नो कर्म के आगमन का अभाव है। पहले तो काय योग था, उदारिक काय योग, तो उसके शरीर के परमाणु का ग्रहण था। कारमान तेजस शरीर नाम कर्म के उदय से उनके परमाणु का ग्रहण था, अभी वो सब रुक गया। इसलिए अयोग केवली के एक आयु प्राण ही होता है। उपचार का आश्रय लेकर उनके एक प्राण, 6 प्राण अथवा 7 प्राण भी होते हैं, परंतु यह पाठ अप्रघात है, अर्थात गौण है। यानी उनके पहले 5 इंद्रिया बनी थी द्रव्य इंद्रिया, तो इसके लिए कह देने से वो कहीं कहीं होगा भी कथन, परंतु वो ठीक नहीं है, यह गौण है, प्रघात में नहीं है। विशेष अनुभव ने जब तक उनके श्रोता नहीं सुनते तो उनके उसका कोई बोध नहीं है ना। ये बात आई थी ना अपने जीवकांड में भी, उनको अनुभव क्यों कहते हैं। हाँ, ये निकालना, यहाँ से वहां से पढ़ के बताऊंगी। केवली की वाणी तो निकली, उनके तो सत्य है, परंतु श्रोता को कब बोध होगा, उनके कान पर टकराएगी तब, तब तक वो अनुभव कहे। विशेषांत, वास्तव में अयोगी जिन के एक आयु प्राण ही होता है, फिर भी उपचार से उनके यहाँ पर 1 या 6 या 7 प्राण बतलाए हैं। जहाँ मुख्य का तो अभाव हो किंतु उसके कथन करने का प्रयोजन या निमित्त हो, वहाँ पर उपचार की प्रवृत्ति होती है। उपचार की इस व्याख्या के अनुसार यहाँ 14वें गुणस्थान में क्षोभम रूप मुख्य इंद्रियों का तो अभाव है, फिर भी अयोगी जन के पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय पाया जाता है और वह जीव विपाकी है। वो पंचेंद्रिय जीव है इस तरह से, इसलिए इस निमित्त से उन्हें पंचेंद्रिय कहना बन जाता है, इसलिए उनके 5 इंद्रिय प्राणों का कथन करना भी सप्रयोजन है। इस प्रकार 5 इंद्रियों में आयु को मिला देने पर 6 प्राण हो जाते हैं, ये कहीं उनके 6 प्राण ऐसा भी कहेंगे। यहाँ पर इंद्रियों से अभिप्राय उस पर्याय से है जिससे अयोगी जिन में पंचेंद्रिय पने का व्यवहार होता है, साथ ही उस पर्याय के साथ उनके शरीर भी पाया जाता है। अतः इस अपेक्षा से अयोगी जिन के काय बल का कथन करना भी सप्रयोजन है। इस प्रकार पूर्वोक्त छह प्राणों में काय बल के और मिला देने पर सात प्राण हो जाते हैं। यद्यपि उनके पहले की छह पर्याप्तियां उसी प्रकार से स्थित है, अतः वे पर्याप्तक कहे जाते हैं, तथा पर्याप्तक अवस्था में मन प्राण भी होता है, इसलिए उनके मन प्राण का भी कथन करना चाहिए था, परंतु उसके कथन नहीं करने का यह कारण है कि उनमें संगी व्यवहार लुप्त हो गया है। यानी संगी मार्गणा में वो संगी नहीं कहते उनको, औपचारिक संगी व्यवहार भी उनमें नहीं माना गया है, अतः अयोगियों के मन प्राण नहीं कहा। इसी प्रकार वचन बल और श्वासोच्छ्वास के अभाव का भी कारण समझ लेना चाहिए। पहले सयोगी जिनके जो पांच इंद्रियां और एक मन, इस प्रकार छह प्राणों का निषेध करके केवल चार ही प्राण बतलाए हैं, वह मुख्य कथन है। अतः जिस उपचार की अपेक्षा यहाँ छह अथवा सात प्राण कहे हैं, वही उपचार वहां भी लागू होता है। यानी वहां पर भी अधिक प्राण कहेंगे, फिर पांच इंद्रिय प्राण वहां भी कह सकते हैं उस अपेक्षा से। आयु प्राण तो अयोगियों के मुख्य प्राण है, फिर भी उसे भी उपचार में ले लिया है, इसलिए इस कथन का विवक्षा भेद ही समझना चाहिए। यहाँ उपचार का प्रयोजन ऐसा प्रतीत होता है कि विवक्षित पर्याय में रखना जो आयु का काम है, वह यहाँ भी पाया जाता है, इसलिए तो वह मुख्य प्राण है। फिर भी जीवन का अवस्थान अल्प है, और अवस्थान के कारणभूत नए कर्मों का आना, योग प्रवृत्ति आदि भी नष्ट हो गए हैं, अतः आयु भी इस अपेक्षा से औपचारिक प्राण कहा जाता है। इस प्रकार अयोगियों के उपचार से एक या छह या सात प्राण कहे गए, सभी को उपचार में डाला। यानी उसकी विवक्षा क्या है, किस अपेक्षा से क्या कहना, वो सब बता दिया। अब प्राण के आगे के आला बताएंगे वो। आगे क्षीण संज्ञा, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रसकाय, अयोग, अभी योग के नीचे जीरो आया पहली बार, अपगत वेद, अकषाय, केवल ज्ञान, यथाख्यात विहार शुद्धि संयम, ये संयम मार्गणा में, केवल दर्शन, द्रव्य से छह लेशाएं, भाव से लेशा रहित स्थान होता है, यह भाव से पहली बार जीरो हो गया, अलेशा। लेशा के नहीं होने का यह कारण है कर्मलेप के कारणभूत योग और कषाय, इन दोनों का ही उनके अभाव है। उसके आगे लेशा आलाप के आगे भव्य सिद्धि, क्षायिक समय दृष्टि, संगी और असंगी विकल्प से रहित, जिसको अनुभव कहा था, अनाहारक, अब यहाँ योग नहीं है तो अनाहारक है, साकार उपयोग तथा अनाकार उपयोग, इन दोनों ही उपयोगों से युगपत उपयुक्त होते हैं। इस तरह से उन्होंने सभी, पहले में पहले सामान्य से सभी आलाप बताए, सामान्य से और पर्याप्तों के अपर्याप्तों के, फिर गुणस्थानों में बता दिए अलग अलग। सिद्ध परमेष्ठी के ओह आलाप कहने पर, अब जो जिससे अतीत हो गए उसको अतीत कहेंगे, अतीत गुणस्थान, अतीत जीव समास, अतीत पर्याप्ति, अतीत प्राण, क्षीण संज्ञा, सिद्धि गति, इंद्रिय में अनिंद्रिय कहेंगे उनको, अकाय या अतीत काय, अयोगी, अवेदी या अपगत वेदी, क्षीण कषाय, केवल ज्ञानी। अभी यहाँ ना उनको संयमी नहीं कहेंगे, तो ना संयम है ना असंयम है ना संयमा संयम है, तो संयत असंयत और संयता संयत विकल्पों से विमुक्त। केवल दर्शनी, द्रव्य और भाव से अलेश, यानी चौदहवें गोलनुसान वाले को द्रव्य लेक्षा तो थी परंतु भाव नहीं थी। यहाँ सिद्धों के तो कुछ नहीं, अभी शरीर ही नहीं है, अभी भव्य है क्या नहीं है तो कभी हो चुके, अभी भव्य भी नहीं कहेंगे तो न भव्य सिद्ध न अभव्य सिद्ध, शायिक सम्य दृष्टि है। अभी संगी भी नहीं कहेंगे असंगी भी नहीं कहेंगे, संगी और असंगी इन दोनों विकल्पों से मुक्त, अनाहारक, साकार उपयोग और अनाकार उपयोग से युगपत उपयुक्त होते हैं। मैंने सिद्धों में भी आलाप बता दिए। इस प्रकार मूल ओघालाप समाप्त हुआ है, इन्हें यहाँ सभी जीवों को एट ए टाइम ले लिया था। अब मार्गणा में एक एक नरक में भी बताएंगे, नरक में फिर गुणस्थान बताएंगे, फिर उसमें पर्याप्त पर्याप्त बताएंगे, उसके डिटेल्स करेंगे, उसको आदेश कहेंगे। ये अभी तक हमने ओघालाप देखे। देखो आदेश की अपेक्षा गति मार्गणा के अनुवाद से, यानी गति मार्गणा के अलग अलग भेद करेंगे, फिर नारकियों में बताएंगे, तिरंचों में बताएंगे, मनुष्यों में, देवों में। नरक गति में नारकियों के आलाप कहने पर पहले नारकियों में इन जनरल बताना है, तो नारकी इन जनरल बताना है तो गुणस्थान चार कहेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा आदि के चार गुणस्थान। अब जीव समास कौन सा है नारकियों का, पर्याप्त है कि अपर्याप्त, दोनों है। हाँ हाँ, निवृत्ति अपर्याप्त भी होते हैं, तो संगी पर्याप्त संगी अपर्याप्त, ये दो जीव समास, निवृत्ति अपर्याप्त को भी अपर्याप्त में लेना, छह पर्याप्तियां छह अपर्याप्तियां, पर्याप्त काल की अपेक्षा 10 प्राण और अपर्याप्त काल की अपेक्षा 7 प्राण। अब चारों संज्ञाएं है, और गति में नरक गति लेना, पंचेंद्रिय जाति है, त्रस्त काय है। अब यहाँ योग कौन कौन से हो गए, मनोयोग 4, वचन योग 4, वैक्रेक वैक्रेय मिश्र, और जाते हुए कारमान का योग भी होगा। तो यहाँ कौन से नहीं है वो गिना यहाँ पर। हाँ 11 औदारिक 2 नहीं है, आहारक 2 नहीं है, 4 भी नहीं, यही कह रहे। औदारिक का योग और औदारिक मिश्र का योग, आहारक का योग और आहारक मिश्र का योग, इन चारों योगों के बिना 11 योग गिनना है। तो मन के 4, वचन के 4, 2 वैक्रिक और 1 कारमान। नपुसक वेद होता है, एक नपुसक वेद होने का यह कारण है कि नारकी जीव द्रव्य और भाव इन दोनों ही वेदों की अपेक्षा नपुसक वेदी होते हैं। उनके द्रव्य से भी नपुसक वेद, भाव से भी होता है। वेद आलाप के आगे चारों कषायें, तीनों अज्ञान और 3 ज्ञान, इस प्रकार 6 ज्ञान, क्योंकि गुणस्थान में चारों इंक्लूड कर दिए। हाँ, तो पहले दूसरे गुणस्थान में 3 अज्ञान है, चौथे वाले को 3 ज्ञान हो सकते हैं, होते हैं। मिश्र उसको अलग से नाम दिया है, तीसरे गुणस्थान की बात करेंगे तो वहाँ 3 मिश्र ज्ञान कहेंगे, उसको 3 मिश्र ज्ञान कहेंगे। तो ये 6 में उसको इंक्लूड कर दिया उन्होंने, यानी 3 मिश्र कह के 9 नहीं गिना है यहाँ पर। असंयम, चारों ही गुणस्थान में असंयम है। आदि के 3 दर्शन, यानी चक्षु अचक्षु अवधि, द्रव्य से पर्याप्त तत्व की अपेक्षा काला काला भास लेशा काऊ काऊ कहते ना कृष्ण, अति अति काला है काऊ काऊ, और अपर्याप्त तत्व की अपेक्षा कापोत और शुक्ल लेशा। हमने देखा था विग्रह गति में शुक्ल, वहां पर्याप्त है तब तक कापोत और बाद में काला। पर्याप्त अवस्था में जो काला काला भास लेशा कही है, उसके कहने का यह तात्पर्य है कि पर्याप्त अवस्था में काला काला भास, ये काल काला हुआ है, काला काला भास अर्थात अति कृष्ण लेशा होती है। नारकियों की पर्याप्त अवस्था में यह शरीर लेशा होती है, किंतु विग्रह गति में नारकी आदि सभी जीवों की द्रव्य लेशा शुक्ल ही होती है, क्योंकि कर्मों के विसर्गोपचय का धवल वर्ण छोड़कर अन्य वर्ण नहीं होता। ये पहले भी बात आई थी। तथा शरीर ग्रहण करने के प्रथम समय से लगाकर अपर्याप्त काल के चरम समय तक शरीर की कापोत्लेशा ही होती है, क्योंकि उस समय शरीर संवलित सकल वर्ण वाला होता है। यानी उसके मिक्स ऐसा कुछ सबका जो इफेक्ट होता होगा, केवल विग्रह गति में केवल शुक्ल मात्र कापोत, कहीं पर भी सभी जीवों के लिए। हाँ न न शरीर के परमाणु ग्रहण चालू कर दिए उसने, कर्मों के कारण है। वहां तो विसर्गोपचय वाला था ही था, अभी उसके साथ वो शरीर के परमाणु भी मिक्स हो गए ना। हाँ अभी कपोत, हाँ ग्रे जिसको कहेंगे। भाव की अपेक्षा तो कृष्ण नील और कापोत्लेशा होती है, क्योंकि ऊपर के नरकों में तो कापोत्लेशा है भाव की, बीच वाले नील लेशा है, नीचे कृष्ण लेशा। लेशा आलाप के आगे भव्य सिद्धि का भव्य सिद्धि दोनों ही होते हैं ना, नारकी की बात चल रही है। और सम्यक तो में छह सम्यक, वहां मिथ्या दृष्टि भी है, साधन वाले तीसरे वाले उपशमी कहने, प्रथम उपशम तो सातवें नरक तक होता है वेदक भी, और यहाँ से ले जाने वाले क्षायिक पहले नरक में होते हैं। यहाँ नारकी इन जनरल बात है, तब उनको तीनों सम्यक्तों को लेंगे। अब एक एक नरक की बात करेंगे, पहले नरक में ही ये बात घटित होगी, नीचे के नरकों में तो दो ही सम्यक्तों कहेंगे। छह सम्यक्त संगिक आहारक अनाहारक, क्योंकि विग्रह गति में अनाहारक है बाद में आहारक है, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। यही रुकेंगे, फिर पर्याप्त अपर्याप्त के अलग कल देखेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो खालो सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो। मयंक भाई।